दिन भर 16 अगस्त दिन शुक्रवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज बंद कमरे में करेगी भारत प्रशासित कश्मीर पर चर्चा। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बोले, घाटी में दफ्तर खुले, फोन लाइनें भी खुलेंगी।
गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैव बीन मेड फुली फंक्शनल फ्रॉम टुडे एंड द अटेंडेंस इन मेनी ऑफिसर्स इज क्वाइट हाई।
लेकिन आम कश्मीरी क्या कहता है?
वो सब झूठ बोलती है, वो आग से खेल रहे हैं। उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ, आग से मत खेलो।
क्या भारत अपनी परमाणु नीति में बदलाव कर रहा है?
नो फर्स्ट यूज कि आज तक हमारी पॉलिसी यही है, अब भविष्य में क्या होगा ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
और विवेचना में रेयान फजल के साथ भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई की बात। आज का प्रसारण पूरे एक घंटे का, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिव्या आर्य से। भारत प्रशासित कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 हटाने के बाद वहां लगाई गई पाबंदियों में अब ढील दी जाएगी। कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने पत्रकार वार्ता में कहा कि आने वाले दो दिनों में टेलीफोन और इंटरनेट सुविधाएं दोबारा चालू होंगी। उन्होंने दावा किया कि सरकारी दफ्तर आज खुल गए और सोमवार से स्कूल और उन तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं भी बहाल कर दी जाएंगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि पाबंदियों के दौरान आम लोगों को चोटें लगने या उनकी जान जाने की कोई घटना नहीं हुई। हालांकि अर्थशास्त्री जॉन रेस समेत नागरिक समाज के तीन लोगों ने कश्मीर का दौरा कर पहले ही इस दावे का खंडन किया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि परमाणु हथियार पहले न इस्तेमाल करने की नीति पर देश कायम है, लेकिन भविष्य में क्या होता है ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। रक्षा मंत्री ने यह बयान राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके पोखरण के दौरे के बाद दिया। भारत ने इसी जगह 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण किए थे। कश्मीर से विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। हांगकांग के सबसे अमीर आदमी माने जाने वाले ली का शिंग ने इलाके में फैले तनाव को कम करने और हिंसा रोकने की अपील के साथ अखबारों में पूरे पन्ने के विज्ञापन छपवाए हैं। तीव्र होते प्रदर्शनों की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के मद्देनजर पिछले दिनों में कई बड़े व्यापारों ने ऐसे विज्ञापन छपवाए हैं। पिछली तिमाही में हांगकांग की अर्थव्यवस्था 0.4% से घटी है। वहीं काओलून पुलिस के कमांडर युंग मान पन ने एक पत्रकार वार्ता में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल के इस्तेमाल का जो आरोप उन पर लगा है उसका खंडन किया। उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि हमने तो आम लोगों की सुरक्षा को सबसे पहले रखा है। हमने मार्च के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की क्योंकि वहां हिंसा होने लगी। हमें उम्मीद है कि लोग सिर्फ नतीजा नहीं उसकी वजह भी समझेंगे। ये थे काओलून पुलिस के कमांडर युंग मान पन के शब्द। अमरीकी महिला सांसद रशीदा तलेब ने इसराइल के नियंत्रण वाले पश्चिमी तट जाकर अपनी फलस्तीनी दादी से मिलने की इजाजत ठुकरा दी है। उन्होंने कहा है कि इसकी शर्तें बहुत अपमानजनक है। गुरुवार को पहले इसराइल ने रशीदा तलेब और अमरीकी महिला सांसद इल्हान उमर को यरूशलम और पश्चिमी तट की औपचारिक यात्रा से रोका था, फिर तलेब को उनकी दादी से मिलने की इजाजत दी थी। दोनों महिलाएं प्रमुख रूप से इसराइल सरकार की आलोचक हैं और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ग्रीनलैंड ने कहा है कि उनके दरवाजे व्यापार के लिए खुले हैं पर वो बिकने के लिए तैयार नहीं है। विदेश मंत्री एन लोन बेगर ने यह बयान अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस सुझाव पर दिया जिसमें उन्होंने इस आर्कटिक क्षेत्र को खरीदने की बात की थी। ग्रीनलैंड के प्रशासन को देखने वाले डेनमार्क के राजनेताओं ने भी इस सुझाव पर आश्चर्य जताया है। पूर्व प्रधानमंत्री लॉर्स रास्मुसेन ने ये तक कहा कि ये शायद अप्रैल फूल मजाक हो। ग्रीनलैंड में पहले ही एक अमरीकी एयरबेस है और 1946 में तब अमरीकी राष्ट्रपति रहे ट्रूमैन ने 10 करोड़ डॉलर में ग्रीनलैंड को खरीदने की पेशकश की थी। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में दंगा विरोधी दस्ते ने सैकड़ों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और बैटन का इस्तेमाल किया है। ये हिंसा तब हुई जब विपक्षी मूवमेंट फॉर डेमोक्रेटिक चेंज प्रदर्शन पर लगी पुलिस की रोक को हटवा नहीं पाया। जिम्बाब्वे में बढ़ती महंगाई के साथ साथ बिजली, खाने और पानी की भीषण कमी चल रही है। विपक्षी गुट के एक प्रवक्ता डैनियल मोलोकेलो के मुताबिक ताजा हिंसा के बावजूद लोगों की हिम्मत टूटी नहीं है। उन्होंने कहा,
We are not backing down. We are going forward. The people of Zimbabwe are tired. They are fed up. They want to end this.
वो कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हट रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे। जिम्बाब्वे के लोग थक चुके हैं, वो इस लंबी यातना से निजात चाहते हैं, इसलिए हम आजाद जिम्बाब्वे के लिए मार्च करने के सिलसिले को जारी रखेंगे। कांगो गणराज्य में इबोला वायरस से लड़ने की कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा है। एक नए इलाके में इबोला के मामले के नए मामले पहली बार सामने आए हैं। गौरतलब है पिछले एक साल में कांगो में इबोला की महामारी से अब तक 1800 लोगों की जानें जा चुकी हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आज से यह कार्यक्रम आप शाम 7:30 से 8:30 बजे तक यानी पूरे एक घंटे तक सुन सकेंगे। भारत प्रशासित कश्मीर में संचार माध्यमों और इंटरनेट पर जारी पाबंदी की वजह से बीबीसी ने दिन भर कार्यक्रम के प्रसारण की अवधि बढ़ाई है। दिन भर के आज एक घंटे के प्रसारण में सबसे पहले बात भारत प्रशासित कश्मीर की। भारत प्रशासित कश्मीर की बात आज संयुक्त राष्ट्र में भी होनी है। ये बातचीत बंद कमरे में होगी। वहां क्या बात होनी है इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें कि भारत प्रशासित कश्मीर को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने बीती 5 अगस्त को भारत प्रशासित कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिले अधिकांश प्रावधानों को रद्द कर दिया था। इसके पहले ही भारत प्रशासित कश्मीर में कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संचार माध्यमों यानी टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट पर लगी पाबंदी जल्दी हटाई जाएगी। इसके कुछ देर बाद जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी कि पाबंदियां हटाई जा रही हैं, टेलीफोन पर लगी पाबंदियां भी धीरे धीरे हटाई जाएंगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
Government offices have been made fully functional from today and the attendance in many offices is quite high.
आज से सरकारी दफ्तरों में पूरी गति से काम शुरू हो गया है और कई दफ्तरों में हाजिरी काफी अधिक है। टेलीफोन संपर्क को लेकर काफी चिंता जताई जा रही थी, पर अब धीरे धीरे उसमें ढील दी जाएगी और फिर उसे पूरी तरह बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि आतंकवादी संगठन आतंकवादी कार्रवाइयां करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं।
पाबंदियों के तहत राजनीतिक दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं और दूसरे लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। मुख्य सचिव ने बताया कि इसकी भी समीक्षा की जा रही है।
प्रिवेंटिव डिटेंशन आर बीइंग कंटिन्यूअसली रिव्यूड एंड एप्रोप्रिएट डिसीजंस विल बी मेड।
लोगों को एहतियातन हिरासत में लिए जाने की लगातार समीक्षा की जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उचित फैसला किया जाएगा। उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में जैसे जैसे पाबंदियों में ढील दी जाएगी, वैसे वैसे जम्मू और कश्मीर में हालात पूरी तरह सामान्य हो जाएंगे।
उन्होंने ये भी दावा किया कि पाबंदियों की वजह से जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है और किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। सुनिए।
The measures put in place have ensured that there has been not a single loss of life.
जो उपाय किए गए उनके कारण एक भी जान नहीं गई है। मैं फिर से कहता हूं कि शांति व्यवस्था कायम करने के सिलसिले में एक भी जान नहीं गई है और ना ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है।
ये थे जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भी आज भारत प्रशासित कश्मीर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। एक याचिका वकील एमएल शर्मा ने दाखिल की है। ये याचिका अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर है। एक अन्य याचिका वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीन की है। कुछ अन्य याचिकाएं भी कोर्ट में दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर सुचित्र मोहंती ने नजर बनाई हुई थी। मैंने अब से कुछ देर पहले उनसे बात की।
देखिए, लगभग 10:35 के आसपास सुनवाई शुरू हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जज की पीठ ने ये कहा कि ये क्या है, व्हाट इज दिस पिटीशन ऑल अबाउट, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा आपका पिटीशन क्या है। मनोहर शर्मा जो पिटीशनर थे उनको काफी लताड़ा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने। हम लोग अयोध्या मामले की सुनवाई छोड़ के आपके मैटर को सुन रहे हैं और आपके पिटीशन क्या है, आपकी प्रेयर क्या है, आपकी प्रीडिंग क्या है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है आप कैसे पिटीशन फाइल कर रहे हो, आपकी ड्राफ्टिंग क्या है, आप ड्राफ्टिंग को देखिए, ड्राफ्टिंग किस तरीके से आप कर रहे हो, आप लॉयर रहे हो, आपको ये कम से कम जानना चाहिए कि किस तरीके से पिटीशन आप फाइल कर रहे हो, आप अमेंड करोगे या फिर मैं कॉस्ट लगा दूंगा या डिसमिस कर दूं, ये बोला। तो उसके बाद तुरंत में मनोहर शर्मा जो कि वकील है, याचिका करता थे, पिटीशन फाइल किए थे, तो उन्होंने बोला कि ऑनरेबल जज मैं इसको अमेंड करूंगा पिटीशन। उसके बाद अनुराधा भसीन जो दूसरे याचिका करता है इस मामले में, तो उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देखिए जो वहां का जो हालात है वो ठीक नहीं है, वहां के जो फोन कनेक्शन है, टेलीफोन कनेक्शन है, लैंडलाइन कनेक्शन है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, यानी कि उनको रिस्टोर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये निर्देश देना चाहिए प्रशासन को कि रिस्टोर करना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग कोई डेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसकी सुनवाई करेंगे।
तो इस मामले में कुछ और याचिकाएं भी आई थी, उनको लेकर कोर्ट ने क्या कहा?
देखिए जो सारे जो पिटीशन है, 4-5 पिटीशन और भी पेंडिंग है इस मामले में। आपको याद होगा सोशल एक्टिविस्ट है तहसीन पूनावाला, उनका भी पिटीशन है कि वहां पे जो हालात है वो ठीक नहीं है, वहां पे लैंडलाइन कनेक्शन रिस्टोर नहीं किया जा रहा है, वहां पे टेलीफोन कनेक्शन नहीं है, वहां पे एकदम पूरी तरह से जो बाहर के जो लोग रह रहे हैं उनके भी साथ फैमिली रिश्तेदार के साथ बात भी नहीं हो पा रहे हैं, तो उनका भी पिटीशन अभी है, 2 हफ्ते के बाद आएगा। तो ये देखने वाली बात रहेगी किस तरीके से 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते के बाद सुनवाई रहेगी। लेकिन जस्टिस ऑफ इंडिया ने जरूर साफ तौर पर ये निर्देश दिया और साफ तौर पर हिंट ये दिया कि इस मामले को हम सुनेंगे, यानी कि साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि इस मामले जितने सारे पिटीशन फाइल हुए हैं, इस मामले में आर्टिकल 370 हो या फिर जो ब्लॉकेट किया गया है इंटरनेट टेलीफोन कम्युनिकेशन जो बंद करके कर दिया गया, उसके ऊपर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जरूर होगी।
सरकार की ओर से भी कोई पक्ष रखा गया क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने?
सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने यह कहा कि वहां पे हालात हमें पता है, वहां पे ग्राउंड रियलिटीज क्या है हम सबको पता है, हम लोग वहां पे पैनी नजर रख रहे हैं, हर एक एक दिन जो सिक्योरिटी एजेंसीज है जो कि पुलिस फोर्स है वहां पे जायजा ले रहे हैं किस तरीके से लोगों के शांति बहाल करिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और हमें आशा है कि जल्द से जल्द, हालांकि इन्होंने कोई डेट नहीं दिया, कोई कितने दिनों के अंदर किया वो नहीं साफ किया, लेकिन हाँ जरूर ये कहा कि हम लोग वहां पे शांति बहाल करने के लिए और सामान्य स्थिति लाने के लिए जल्द से जल्द फ्यू डेज का हवाला दिया और बोला कि हो जाएगी।
ये थे सुचित्र मोहंती। आपने सुना कि सरकार का क्या कहना है, अब आपको बताते हैं कि भारत प्रशासित कश्मीर में जमीनी स्थिति क्या है। बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर ने इसका जायजा लिया, श्रीनगर में उन्होंने लोगों से बात भी की, सुनिए उनकी रिपोर्ट।
हम इस वक्त भारत के जेर इंतजाम कश्मीर के वाहिद मैटरनिटी हॉस्पिटल ललदेड हॉस्पिटल में हैं, जहां पर पेशेंट्स को बजाहिर इंतजामिया की तरफ से कोई शिकायत तो नहीं है, लेकिन जिस तरह के यहां हालात हैं पूरी तरह से कश्मीर बंद है, कर्फ्यू है, महसूर है, और इसके साथ साथ न लैंडलाइन की सहूलत है और न ही मोबाइल फोन नेटवर्क काम करता है। लोगों को अपने घर वालों तक पैगाम पहुंचाना है वो वहां से बहुत ही रिस्क उठा के, बहुत ही खतरात मोल लेकर यहां की तरफ चल पड़ते हैं अपनी माओं बहनों या अपनी बीवियों के साथ, लेकिन बैक होम उनके घर वालों को पता नहीं होता है कि वो हॉस्पिटल पहुंचे या नहीं। जी आपका नाम?
मोहम्मद अब्बास मलिक। देखिए बहुत सारे मीडिया वाले हमें बोल रहे हैं कि यार हालात ठीक है, बहुत कुछ ठीक है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन जब हमें पेशेंट यहाँ पे लाना होता है तो हमने एम्बुलेंस में अपना पेशेंट लाया, कोई भी सहूलियत नहीं है, ना गाड़ियों को जाने देते हैं, ना मोबाइल फैसिलिटी है, ना इंटरनेट फैसिलिटी है, ना लैंडलाइन, इवन वी कैन नॉट एसएमएस, वी कैन नॉट टेक्स्ट मैसेज, सिंपल मैसेज।
आप कहाँ से आए?
मैं शोपियां से आया। मेरा नाम बिलाल अहमद है।
बिलाल साहब आप शोपियां से आए, एक तो आपने इतना सफर किया चूंकि पाबंदियां हैं, कतगने हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला आपके साथ क्या पेश हुआ, आपका यहाँ कौन है दाखिल?
सर मुझे यहाँ हो गए अभी 3 दिन हो गए, और मैं जब आ गया मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी में आ गया, बहुत सारा मुश्किलात के बावजूद मैं यहाँ पहुँच गया, लेकिन बहुत जगह
पेशेंट कौन है?
पेशेंट मेरी बहन है यहाँ, मुझे बहुत सारे जगहों पे रिखाया गया, बहुत जगह पे मुझे ये बताया गया कि आपको नहीं जाने देंगे। बाद में उन्होंने, मैंने उनको दिखाया ये डॉक्यूमेंट्स, यहाँ का कार्ड दिखाया, उन्होंने बोला कि अगर आप जा सकते हो तो वापस नहीं आ सकते। तो खुदा का करना था कि यहाँ हमें एडमिट किया गया, 2-3 दिन हो गए मुझे यहाँ, अब यहाँ मुझे बहन की जो है उसका औलाद हो गया, लड़की पैदा हो गई, लेकिन कम्युनिकेशन गैप है इतनी है कि अगर हम उनको घर वालों को पैगाम ये देना चाहते हैं कि हमारा बच्चा हो गया बहन का, तो वो खुशी नहीं पहुंचा सकते
हैं। यहाँ भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल करते, टेक्स्ट करें या कुछ पैसे निकालें, अगर गवर्नमेंट की तरफ से एटीएम की फैसिलिटी यहाँ नहीं है, दुकान की फैसिलिटी नहीं है, चाय का वगैरह थोड़ा सा कंटेन में मिल रहा है, लेकिन बाहर अगर हम जाएं तो कुछ हाथ में नहीं आ रहा है।
आपका नाम?
मेरा नाम राशिद हुसैन है, मैं शोपियां डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
मैं इस वक्त एलडी हॉस्पिटल में हूँ। ये जो मीडिया वाले आते हैं यहाँ,
आपका कौन है यहाँ?
मेरी बहन है यहाँ। हाँ, मेरे मामे के लड़की की।
उनका हाल क्या है? आप
ठीक है इस वक्त? लेकिन हमें घर जाना है इस वक्त, यहाँ कोई गाड़ी नहीं मिलती है।
मतलब आपको रुख्सत किया गया है?
रुख्सत किया गया, अभी 12 बजे हमें रुख्सत कर देंगे, डिस्चार्ज देंगे।
लेकिन
जो ये मीडिया वाले यहाँ आकर अफवाहें फैलाते हैं कि श्रीनगर में या शोपियान में या इस्लामाबाद में या अनंतनाग में हालात ठीक है, कहाँ है हालात ठीक? यहाँ तो पैसा ही नहीं मिलता है कहीं से, ना कोई।
उनके हालात ठीक कहने का मतलब ये हो सकता है कि बहुत बड़े पैमाने पे तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन आपका कहना है कि पूरी तरह से लाइफ जाम है।
कुल कश्मीर बंद है इस वक्त, कोई दुकानें नहीं खुली, कोई, वो सब झूठ बोलती है, वो आग से खेल रहे हैं। उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ, आग से मत खेलो।
आपका नाम?
मेरा नाम है शहल अहमद।
आपका कौन है यहाँ?
मेरी मासी है यहाँ।
उनका क्या हाल है?
उनकी ओवेरियन सिस्ट थी, वो रिमूव की गई, हम पिछले 8 दिनों से यहाँ है।
अच्छा,
डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से।
डिस्चार्ज किया गया आपको?
नहीं, उसको डिस्चार्ज नहीं किया गया, उसको पहले SMH में एडमिट किया गया था और वहाँ से फिर यहाँ लाया गया। कर्फ्यू की वजह से हमें बहुत सफर करना पड़ा और ऊपर से जो फौज है वो भी डिस्टर्ब बहुत करती है, दो दो लोगों को साथ चलने नहीं देती है, किसी को साथ नहीं, उसको साथ नहीं चलने देती है, डॉक्यूमेंट्स हर बार चेक कराने पड़ते हैं, यानी कि हर वक्त हर जगह एफर्ट्स उठाने पड़ते हैं।
आपके घर वालों को ये मालूम है?
हमारे घर वालों को कुछ मालूम नहीं है, पिछले 5 दिनों से वो टोटली बेखबर है, न वहाँ से कोई आया न यहाँ से कोई गया, कुछ भी नहीं है, जिंदगी टोटल हाल्ट बन गई है यहाँ।
आप सुन रहे थे BBC संवाददाता रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
BBC इंडिया बोल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से किया ऐलान, सेना के तीनों अंगों के प्रमुख के तौर पर होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्या है इस घोषणा का मतलब? क्या इससे रक्षा तैयारियों को मिलेगी मदद या होगा नुकसान? यही है इस बार इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 17 अगस्त शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के पोखरण में थे। ये वही जगह है जहां भारत ने साल 1998 में परमाणु परीक्षण किए थे। राजनाथ सिंह से सवाल भारत की परमाणु नीति पर भी हुआ, तो सुनिए उनका जवाब।
ये बात सच है कि जहां तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज की आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या भारत की नीति बदल रही है? बीबीसी हिंदी के रेडियो एडिटर राजेश जोशी ने ये सवाल किया रक्षा मामलों के विशेषज्ञ राहुल बेदी से।
ये चीज राजनाथ सिंह से पहले मनोहर पारिकर साहब ने भी कही थी जब डिफेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने कहा था कि ये नो फर्स्ट यूज जो है उससे वो सहमत नहीं है और वो नो फर्स्ट यूज को बदलना चाहते हैं, मगर उन्होंने ये भी कहा था कि वो उनकी पर्सनल ओपिनियन है। तो राजनाथ सिंह जी दूसरे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने कहा है, तो अगर हम ये डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट की बात सीरियसली लें तो ये साबित होता है कि हिंदुस्तान की जो सरकार है, BJP की जो सरकार है, उसमें कुछ सोच चल रही है।
अगर भारत के डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सुनेगा तो इसका क्या अर्थ निकाला जाएगा?
पहली बात तो है कि जब 98 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने बिल क्लिंटन को चिट्ठी लिखी थी कि ये चाइना के डर से और चाइना की डिटेरेंस के लिए ये न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। तो वो जो चिट्ठी थी वो लीक हो गई थी न्यूयॉर्क टाइम्स में और वो छप गई थी और काफी उसमें उथल पुथल हुई। तो पहली बात तो ये चाइना के साथ इसका रिएक्शन होगा, और दूसरी बात पाकिस्तान के साथ भी इसका रिएक्शन होगा, क्योंकि ये रीजन में इंडिया, पाकिस्तान और चाइना जो है वो एक दूसरे की सीमा के साथ साथ है, और ये तीनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, और भारत का पाकिस्तान के साथ भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है कश्मीर के ऊपर और चाइना के साथ भी है। तो ये एक बहुत सीरियस बात मानी जाएगी, क्योंकि इंडिया का जो आज स्टैंड है वो एक नो फर्स्ट यूज और जिसे अंग्रेजी में रिटेलिएटरी डॉक्ट्रिन कहते हैं कि अगर इंडिया पे हमला किया जाए न्यूक्लियर परमाणु वेपन के साथ तो इंडिया रिएक्ट करेगा।
लेकिन जब कोई राष्ट्र, कोई देश अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी की बात करता है तो क्या वो एक साउंड बाइट के जरिए तय होती है या उसके पीछे बाकायदा पूरी सरकार और उसका थिंक टैंक और उसके जितने अधिकारी हैं वो मिल करके डॉक्ट्रिन तय करते हैं?
ये साउंड बाइट के जरिए या ट्वीट के जरिए ये ऐसी चीजें साबित नहीं की जाती। ये तो मैं हालात तो जानता नहीं, मगर शायद ये भी हो सकता है कि राजनाथ सिंह जी पोखरण में थे, पोखरण में टेस्ट हुए हैं दो बार, एक 1974 में, एक 1998-98 में, और ये वाजपेयी जी की पहली बरसी है, तो शायद वो एक इमोशनल बात से कैरी अवे होके उन्होंने ये ट्वीट किया है और ये कहा है। मगर इसमें तो बहुत सोच समझ के और बहुत ही डिलिबरेशन के बाद ही डिसीजन ली जाती है, और ये मैं समझता हूँ कि ये राजनाथ सिंह जी ने ऐसे ही अफवाह में ही बोल दिया हो शायद।
ये थे रक्षा मामलों के विशेषज्ञ राहुल बेदी, और उनसे बात कर रहे थे राजेश जोशी। और अब बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, जो आज भारत प्रशासित कश्मीर को लेकर बंद कमरे में चर्चा करेगी। ये चर्चा पाकिस्तान की गुजारिश पर हो रही है, हालांकि इसमें पाकिस्तान का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं होगा। हम बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं और इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। ये 5 देश हैं अमरीका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इस बीच फोन लाइन पर अमरीका के न्यूयॉर्क से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं सलीम रिजवी। जी सलीम, स्वागत है आपका।
जी वात्सल, मैं यहाँ इस वक्त संयुक्त राष्ट्र के बिल्कुल गेट पर खड़ा हुआ हूँ।
जी आप वहाँ गेट पर हैं, मीटिंग शुरू हो गई है
जी अब से थोड़ी देर पहले, और यहाँ यही उम्मीद की जा रही है कि बंद कमरे में चुकी होनी है, तो वहाँ पर ये पहले चर्चा होगी। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये पहले डिसाइड होगा कि भाई आया ये मुद्दा जो कश्मीर का है यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो भी सकती है कि नहीं, क्योंकि वो 71 के बाद से शिमला समझौते की वजह से वो एक बायलैटरल इशू माना जाता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कशन उसका बनता नहीं है। तो ये एक पहले शायद इस पे डिस्कशन हो, फिर ये मामला किस तरह वहां पर चर्चा होती है और क्या 15 जो पूरे सदस्य हैं और 5 जो परमानेंट सदस्य हैं वो किस तरह से रुख लेते हैं और आगे क्या मामला ये बढ़ता है, पूरा जो एक फुल फ्लेजेड पूरी बाकायदा एक जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है क्या ये मामला उसमें भी जाएगा, सबकी नजर इसी पर लगी हुई है। मैं फिलहाल अभी यहाँ जो खड़ा हूँ तो देख रहा हूँ कुछ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कश्मीर के लिखा हुआ है उसमें कश्मीरीज फॉर ह्यूमन राइट्स और इस तरह की चीजें, जो लग रहा है कि कश्मीर में जो भारत का कदम है उसके खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, और ये 30-40 लोग लग रहे हैं, इसमें महिलाएं, बच्चे और कुछ लोग।
जी सलीम, आप वहाँ खड़े हैं, आप वहाँ देख पा रहे हैं लोगों को, क्या इनमें से कुछ लोगों से आप बात कर सकते हैं, उनसे आपकी बात हो सकती है?
जी जी जरूर, मैं कोशिश करता हूँ, बिल्कुल, मैं बस चल के उनकी तरफ जा रहा हूँ जो कि चंद फीट है। तो ये जब तक बता दें आपको कि यहाँ पर चीन की तो हिमायत लग रही है इस पूरे मामले में, लेकिन उसके अलावा रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, इन सब का कोई रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं दिख रहा है। तो ये एक जो पाकिस्तान की मांग पे ये बैठक बुलाई गई है, तो लगता नहीं है कि यहाँ पर पाकिस्तान को कोई खासी हिमायत इसमें मिल रही है और मामला उसके लिए आगे बढ़ता नजर आ रहा है।
जी क्या इस मीटिंग को लेकर भारत पाकिस्तान किसी के प्रतिनिधि से आपकी बात हो पाई है? भारत के डिप्लोमेट जो है वो कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं इस बैठक जो अब शुरू हो चुकी है?
देखिये यहाँ पर जब बात करने की कोशिश की जाती है तो उसमें ये मसला है कि राजदूत रेफर कर देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, तो ये एक यहाँ पर रोक बिल्कुल नहीं मिल पाया। मैंने कोशिश की थी, मैं यहाँ पर हूँ, ये प्रोटेस्ट वगैरह के प्लेकार्ड लिए खड़े हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका?
भाई साहब मेरा नाम है हनीफ।
हनीफ साहब यहाँ क्या एहतजाज कर रहे हैं?
भाई साहब हम एहतजाज कर रहे हैं कि अंदर हो रही है मीटिंग
जी
यूएनओ में, तो हम चाहते हैं कि जितने मेंबर हैं कश्मीर के लिए, कश्मीर काज के लिए वो फाइट करें, और हम भी इसलिए यहाँ पे आए हैं कि अल्लाह ताला इतने मजलूम लोग, उनके पास पानी नहीं है, उनके पास खाना नहीं है, उनको मारा जा रहा है, कम से कम मोदी उसको स्टॉप करे।
जी सलीम रिजवी, अच्छा, ये क्या बाहर से आए हैं या स्थानीय? जी मैंने सुना है।
हनीफ साहब कहाँ से हैं आप? मैं जी लाहौर पाकिस्तान से।
तो पाकिस्तान से वहाँ पहुँचे हैं, यानी पाकिस्तान
लाहौर के मतलब पाकिस्तान के ज्यादातर लोग हैं, और कहीं के भी हैं आप?
जी जी
जी, कई जगह हमने ये देखा था, कल हमने देखा था कि जहाँ विरोध हो रहे थे,
सिर्फ पाकिस्तानी है
नहीं, पाकिस्तान भी, इंडिया के भी एहतजाज कर रहे हैं लोग जो है यहाँ पे।
सलीम रिजवी, सलीम रिजवी, मैं आपसे जानना,
वात्सल्य आपने सुन लिया कि भाई यहाँ पर जी इस तरह के लोग हैं कि जिसमें वैरायटी कही जा सकती है, लेकिन ज्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान से है, कुछ कश्मीरी भी लग
जी,
रहे हैं।
जी, मैं आपसे एक चीज मैं आपसे
बात कर सकता हूँ, ये किस चीज का एहतजाज? आप पहले कहाँ से हैं?
मैं कश्मीर से हूँ।
आपका नाम?
माय नेम इज करीना।
ये बीबीसी हिंदी के लिए है, तो ये बताइए कि क्या एहतजाज है? आप लिए हुए बैनर, एक प्लेकार्ड है, एंड द ऑक्यूपेशन इन कश्मीर, मुतालबा क्या है, आप यहाँ क्यों हैं?
यहाँ पे इसलिए है कि कश्मीर जहाँ से मैं हूँ, मेरी फैमिली और होल कश्मीर इज अंडर ऑक्यूपेशन. टुडे इज 13th डे एंड दे आर अंडर सीज. माय फादर इज इल, ही इज बेड रिडन, ही हैज नॉट गॉट एनी मेडिकेशन, नथिंग. दिस इज नॉट अगेंस्ट एनी. जी ठीक है, तो मतलब ये हम किसी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कश्मीर और कश्मीर के लोगों के लिए कर रहे हैं. उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं आ रहे हैं, उसमें कश्मीरी पंडित भी आ रहे हैं, उसमें कश्मीरी सिख भी आ रहे हैं, कश्मीरी बुद्धिस्ट भी आ रहे हैं. हम सबके लिए कर रहे हैं, हम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि कश्मीर ऐसा है जहाँ मतलब इकट्ठे सब लोग रह रहे हैं.
बात हमने सुनी. अब सलीम
रिजवी
उधर है और मैं हम सलीम रिजवी अपनी बात रखने के लिए और वहां जो लोग मौजूद हैं उनकी बात हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया. कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके राकेश सूद से इस बैठक को लेकर मैंने कुछ देर पहले बात की थी, आप सुनिए ये बातचीत.
सिक्योरिटी काउंसिल एक तरह से एक क्लोज डोर इनफॉर्मल मीटिंग जिसके ना कोई रिकॉर्ड रखे जाते हैं और ना जिसके अंदर जो स्टेटमेंट्स की जाती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है. इसके अंदर पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी नहीं होगी और हिंदुस्तान की तरफ से भी कोई नुमाइंदगी नहीं होगी. सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल इसके ऊपर बिहाइंड क्लोज डोर्स कुछ चर्चा होगी, तो उसमें ये हम लोग अपने जो हमारे मित्र देश हैं हम उनसे पता करेंगे, वो हमारी परिस्थिति जानते हैं, उन्होंने ऑलरेडी कई लोगों ने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दिए हुए हैं, तो वो इसके ऊपर बाद में हमको ब्रीफ करेंगे कि किस तरह बातचीत आगे बढ़ी.
ये भी इसमें कहा जा रहा है कि चीन ने खास तौर पर ये मीटिंग अरेंज कराने में पाकिस्तान ने क्योंकि चीन से रिक्वेस्ट की, उसके बाद चीन का रोल रहा.
पाकिस्तान और चीन के संबंध हम सब जानते हैं कि बहुत पुराने संबंध हैं, बहुत घनिष्ठ संबंध हैं. चीन ने पाकिस्तान की हर तरह से, उनके डिफेंस है, न्यूक्लियर है, मिसाइल है, तीनों जगह उन्होंने पाकिस्तान की मदद की है. अब वो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति से भी काफी मदद कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए चीन का ये करना एक तरह से एक्सपेक्टेड ही है. और अभी पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो थे वो चीन गए भी थे पिछले हाल में, और तो वो ये जरूर उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट भी की होगी. मैं ये समझता हूँ कि अभी हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर भी एक हफ्ता पहले चीन की यात्रा पे थे, और वहां पर मैं इसके ऊपर दावे से तो नहीं कह सकता पर मुझे काफी हद तक ये विश्वास है, क्योंकि अभी ये बातचीत हो रही है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अक्टूबर में आएंगे हिंदुस्तान, तो इसलिए मेरी ये समझ है कि शायद एक इनफॉर्मल तरह से डॉक्टर जयशंकर हमारे विदेश मंत्री को चीनियों ने बताया होगा कि देखिए हमको कुछ करना है, और पर आप इत्मीनान रखिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि चाइना इस समय अपनी जो उनकी डिप्लोमेसी हमारे साथ चल रही है वो उसको किसी तरह उसको अपसेट नहीं करना चाहेंगे, उसको कोई खतरे में नहीं डालना चाहेंगे, तो इसलिए वो अपनी दोनों तरफ से डिप्लोमेसी चला रहे हैं. भारत के साथ भी उनके ताल्लुकात सही रहे और पाकिस्तान के साथ जो एक ऐतिहासिक संबंध है वो थोड़ा सा मेंटेन होते रहे.
ये जो मीटिंग है इसको लेकर भारत भी काफी एश्योर्ड लग रहा है, तो क्या उसके और रीजंस?
उसके रीजन बड़े साफ हैं कि अगर जैसा हमने कहा है जो कुछ वहाँ हुआ है कश्मीर में वो हमारा एक अंदरूनी मामला है, उसके ऊपर अगर कुछ टिप्पणी होती है तो वो हम कानूनी तौर के ऊपर तो वो हमारा सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि जो बिल हमने पास किया पार्लियामेंट में या जो हमने वहाँ पे धारा 370 का जिस तरह उसके आर्टिकल का प्रयोग किया या जो भी किया है क्या वो कानूनी तौर पे जायज है या नहीं, वो जो चीज है उसका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कोई रिश्ता नहीं है. हाँ, पाकिस्तान का मुद्दा, एक सिंपल मुद्दा ये है कि देखिए वहां पर इस समय कश्मीरी लोगों के ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक वायलेशन हो रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन के ऊपर रोक टोक लगी हुई. ये सिर्फ एक ये मोटी बात है और इससे अधिक पाकिस्तान का कोई बाकी आर्गुमेंट पाकिस्तान की मुझे लगता है कि बेबुनियाद है.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बंद कमरे के अंदर बैठक कर रही है और उसे लेकर जानकारी दे रहे थे राजनयिक राकेश सूद.
घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है.
The Eid namaz were offered at different mosques. After the prayer, the congregation dispersed peacefully.
अंदर से लोगों के अंदर मतलब भरा हुआ है, जो ही लोगों को मौका मिलेगा ये उबल पड़ेगा.
फोन कॉल्स बंद है, इंटरनेट बंद है.
इंटरनेट बंद हो या कर्फ्यू लगा हो,
बीबीसी हिंदी रेडियो हमेशा आपके साथ है.
इस शुक्रवार 16 अगस्त से दिन भर कार्यक्रम का प्रसारण पूरे एक घंटे तक होगा।
भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 से 8:30 बजे तक हफ्ते के सातों दिन
25 और 31 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795 और 11995 किलोहर्ट्ज पर।
बीबीसी हिंदी रेडियो,
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन भर। ये कार्यक्रम अभी जारी है, अगले आधे घंटे में आप सुनेंगे रेहान फजल की विवेचना, जिक्र होगा केरल में बाढ़ की स्थिति का, खेल की खबरें भी होंगी, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक के विश्व समाचार पर। समाचार सुनिए दिव्या आर्य से।
बीबीसी समाचार दिव्या आर्य से। भारत प्रशासित कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर पाकिस्तान के आपत्ति जताने के बाद इस मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में एक बंद कमरे में अनौपचारिक बैठक इस वक्त जारी है। यह ऐसी बैठक है जिसमें न ही पाकिस्तान की ओर से कोई नुमाइंदगी है और न ही भारत की ओर से। उस दूसरी तरफ भारत प्रशासित कश्मीर में जो पाबंदियां धारा 370 हटाने के बाद लगाई गई उनमें अब ढील दी जाएगी। कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने पत्रकार वार्ता में कहा कि आने वाले दो दिनों में टेलीफोन और इंटरनेट सुविधाएं दोबारा चालू होंगी। उन्होंने दावा किया कि सरकारी दफ्तर आज खुल गए और सोमवार से स्कूल और उन तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं भी बहाल कर दी जाएंगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि पाबंदियों के दौरान आम लोगों को चोटें लगने या उनकी जान जाने की कोई घटना नहीं हुई। हालांकि जॉन द्रेस समेत 3 नागरिक समाज के लोगों ने कश्मीर का दौरा कर इस दावे का पहले ही खंडन किया है। हांगकांग के सबसे अमीर आदमी माने जाने वाले ली काशिंग ने इलाके में फैले तनाव को कम करने और हिंसा रोकने की अपील के साथ अखबारों में पूरे पन्ने के विज्ञापन छपवाए हैं। तीव्र होते प्रदर्शनों की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के मद्देनजर पिछले दिनों में कई बड़े व्यापारों ने ऐसे विज्ञापन छपवाए हैं। पिछली तिमाही में हांगकांग की अर्थव्यवस्था 0.4% से घटी है। अमरीकी महिला सांसद रशीदा तलेब ने इसराइल के नियंत्रण वाले पश्चिमी तट जाकर अपनी फलस्तीनी दादी से मिलने की इजाजत ठुकरा दी है। उन्होंने कहा है कि इसकी शर्तें बहुत अपमानजनक हैं। गुरुवार को पहले इसराइल ने रशीदा तलेब और अमरीकी महिला सांसद इल्हान उमर को यरूशलम और पश्चिमी तट की औपचारिक यात्रा पर जाने से रोका था, फिर तलेब को उनकी दादी से मिलने की इजाजत दी थी। दोनों महिलाएं प्रमुख रूप से इसराइल सरकार की आलोचक हैं और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। एक 13 साल के अमरीकी लड़के ने राष्ट्रपति ट्रंप से अपनी मां की रिहाई में मदद की अपील की है। लड़के की मां मिस्र गई थी जहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर मुस्तफा हामिद ने कहा कि वो जुलाई में कायरो हवाई अड्डे पर पहुंचते ही अपनी मां से बिछड़ गए। उनकी मां जो अमरीकी मिस्र नागरिक है उन पर सोशल मीडिया पर मिस्र के खिलाफ भड़काऊ बातें लिखने का आरोप है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि प्रवासियों को डूबने से बचाने के बाद हफ्तों तक समंदर पर जहाजों में रखना व्यावहारिक नहीं है। इटली के पास जहाजों में रुके हुए ऐसे प्रवासियों के बारे में बताते हुए एक प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें जल्द देश की सीमा में दाखिल कर जमीन पर लाना और मदद मुहैया करवाना जरूरी है। यूरोपीय यूनियन के 6 देशों ने स्पेन के जहाज ओपन आर्म्स पर 2 हफ्ते से सवार करीब 130 प्रवासियों को अपनी सीमाओं में लेने का प्रस्ताव दिया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अब बात केरल की। केरल के कई जिले इन दिनों बाढ़ से जूझ रहे हैं, लोग खासी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हमारी संवाददाता दीप्ति बथनी फिलहाल केरल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं और अभी मल्लपुरम में हैं। बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य ने दीप्ति से बात की।
अभी हम नॉर्थ केरला में मलप्पुरम जिला एक है, वहाँ पे निलंबूर टाउन से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है तवलपरा, जहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुआ था 8 अगस्त को। सीएम पिनाराई विजय ने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था इस साल के फ्लड्स में कम से कम 80 से ज्यादा लैंडस्लाइड हुए हैं, जगह जगह वायनाड हो या कोची हो या मलप्पुरम हो। तो ये जो कवलापरा है ये सबसे बड़ा लैंडस्लाइड है, कम से कम 20 घरों के ऊपर पहाड़ गिर गया है। अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। 37 बॉडीज वहां पर रिट्रीव हो चुके हैं और अभी भी और तो 20-25 से भी ज्यादा लोग वहां पे दफने हुए होने की खबर आ रही है। बॉडीज को निकाल कर फैमिलीज को आइडेंटिफिकेशन के लिए भेजने की कोशिश में है।
दीप्ति, जिस तरह के इलाके की आप बात कर रही हैं, क्या यहाँ पर लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन होना एक बहुत ही आम बात है? पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, वहाँ के लोग आपको क्या बता रहे हैं?
वहाँ पे लोगों से जब हमने बात किया, पिछले साल जो था वहाँ पे बारिश होने की वजह से घरों में पानी आया था, पर लैंडस्लाइड कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं हुई थी पिछले साल। पर इस साल जो बारिश हुई है, अमाउंट ऑफ बारिश भी जो है वो ज्यादा है और लैंडस्लाइड भी होने की वजह से ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। जैसे हमने आज कवलापुरा में एक फैमिली से मिले, वहाँ रिलीफ कैंप में उनसे बात किया, उनके फैमिली में 14 लोग थे और जिसमें से 7 लोगों की मौत हुई है, 5 लोगों के बॉडीज मिले हैं और अभी भी बाकी जो 2 लोग हैं उनका भाई और उसके बहन की बॉडीज के लिए अभी भी इंतजार में है ये फैमिली। इनका कहना ये था कि 8 अगस्त को ये ऐसे बैठे थे खाना खाने से पहले और अचानक से ये लैंडस्लाइड हुआ था, तो उनको आशंका ही नहीं था कि इतना बड़ा कुछ इनका डिस्ट्रक्शन होगा। वो कहते हैं घर वाले भी खो चुके हैं, अपना घर भी खो चुके हैं, पूरा गाँव भी गया है, तो अभी पता नहीं कितने दिन रिलीफ कैंप में रहना पड़ेगा, पर कुछ ना कुछ करके आगे जाना तो पड़ेगा क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो कम से कम उनके लिए तो आगे कुछ ना कुछ ढूंढ कर अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की कोशिश में बनाना पड़ेगा। यहाँ कावलापरा में जिस रिलीफ कैंप में हमने पद्मिनी से मुलाकात की है, वहाँ पे रिलीफ कैंप में 500 से भी ज्यादा लोग इस वक्त वहाँ रिलीफ कैंप में रह रहे हैं और वहाँ पे खाने के इंतजाम है, कपड़े वगैरह दिया जा रहा है वहाँ पे जो डोनेशन के तौर पर आ रहे हैं और मेडिकल इमरजेंसीज के लिए वहाँ पे एक मेडिकल टीम भी मौजूद थी।
ये थी दीप्ति बथिनी और उनसे बात कर रही थी दिव्या आर्य। और अब विवेचना। भारत को अंतरिक्ष तक पहुंचाने में अगर किसी शख्स की सबसे अधिक भूमिका थी तो वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। वो न सिर्फ परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे बल्कि अन्य कई संस्थाओं के उदय में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अंतरिक्ष विभाग में अपने करियर की शुरुआत उन्हीं की देखरेख में की थी। विक्रम साराभाई की जन्म शताब्दी पर उनके जीवन से जुड़े दिलचस्प प्रसंगों को याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
एस्पेक्ट ऑफ स्पेस रिसर्च व्हिच आई वुड लाइक टू स्ट्रेस मोस्ट इज इन रिलेशन टू द नेशनल कैपेबिलिटी इज सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट दिस विल जनरेट एंड इफ आई वेयर टू गिव माय ओन इवैल्यूएशन ऑफ दिस आई थिंक The benefits of these far outweigh.
ये आवाज है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद को अस्तित्व में लाने वाले विक्रम साराभाई की। 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद की एक बड़ी कपड़ा मिल के मालिक अंबालाल साराभाई के घर एक लड़का पैदा हुआ। विक्रम साराभाई की जीवनी लिखने वाली अमृता शाह बताती हैं।
जब उनका जन्म हुआ, मेरे ख्याल से 4 भाई बहन तब थे, 2 विक्रम साराभाई के बाद पैदा हुए, तो उनको बुलाया गया कि भाई हुआ है, तो दौड़ के ऊपर चले गए और बोले कि हाँ कितने बड़े खान हैं, बिल्कुल गांधी जी की तरह हमको इसको बंद करके पान की तरह बंद करना है।
1920 में रविन्द्रनाथ टैगोर अहमदाबाद की यात्रा पर आए थे और विक्रम के घर पर ही उनके पिता के मेहमान के तौर पर ठहरे थे। जब टैगोर ने उन्हें पहली बार देखा तो उन्होंने कहा था कि एक दिन ये लड़का बहुत बड़े काम करेगा।
टैगोर आई थिंक एज एन एमेचर एस्ट्रोनोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ द शेप ऑफ द हेड, टैगोर थोड़ी दिलचस्पी थी उसमें। उन्होंने जब बेबी विक्रम को देखा तो उनके स्कल का शेप देख के कहा कि ये आगे जाके बहुत बड़े काम करेंगे। जब 18 साल पे जब विक्रम साराभाई कैम्ब्रिज गए साइंस पढ़ने यानी फिजिक्स एंड मैथ पढ़ने, तब उनका रिकमेंडेशन लेटर टैगोर ने लिखा था।
विक्रम साराभाई की बेटी मल्लिका साराभाई आज जानी मानी नृत्यांगना है। वो बताती हैं कि उन्होंने अपने पिता को हमेशा विचारों में मग्न देखा। मशहूर चित्रकार रोडा की कलाकृति थिंकर की तरह उनका हाथ हमेशा सोच की मुद्रा में उनकी ठुड्डी पर रहता था।
बहुत डाउन टू अर्थ, जिसके भी साथ बात करे उसको 100% कॉन्सेंट्रेशन दे, बिल्कुल हायरार्की न हो, बहुत मौजी ले पिता, बहुत सिंपल, हमेशा सफेद खादी के पजामा कुर्ता पहनते, सूट पहनना पड़ता तो नीचे कोल्हापुरी चप्पल पहनते, वेस्टर्न और क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक, बच्चे उनके सबसे बड़े हम दोनों मेरे भाई और मैं प्राइड थे, और जब भी कुछ उन्हें अवार्ड मिलता था तो हमेशा एटीट्यूड ये थी कि ये तो आप दोनों के लिए मिले आया हूँ। एक बहुत डेमोक्रेटिक बाप, जो मैं 3 साल की थी तब भी अगर फैमिली के बारे में कुछ डिसीजन लेना हो जिसका अफेक्ट मुझ पे पड़ेगा तो मुझे और मेरे बड़े भाई को कन्विंस करने की कोशिश करके कंसेंसस लाके फिर ही वो होगा। फॉर इंस्टेंस एक नई गाड़ी खरीदनी हो तो गाड़ी का कलर कौन सा होगा, मुझे याद है मैं 3 साल की थी तब मैंने हट पकड़ी थी कि अम्मा की जो नई फियट आती थी वो पिंक कलर की होनी चाहिए, और मुझे याद है कि 3 या 4 दिन हर रोज वो लोग मुझे कन्विंस करते रहे और जब फाइनली मैं कन्विंस हुई तब गाड़ी खरीदी गई काले रंग की।
कैम्ब्रिज से वापस लौटने के बाद विक्रम साराभाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर चले गए, जहां उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन की देखरेख में अपना शोध जारी रखा। वहीं उनकी मुलाकात महान परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा से हुई, जिन्होंने उनकी मुलाकात मशहूर नृत्यांगना मृणालिनी स्वामीनाथन से कराई, जो बाद में उनकी पत्नी बनी।
होमी भी बहुत एक कॉनोसियर थे चीजों का, आर्टिस्ट थे, बहुत खूबसूरत ड्रॉ करते थे, उनको भी वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद था, वो भी एक काफी वेल टू डू फैमिली से आते थे, तो वो हमेशा पापा को टीज करते थे कि तुम इतने इंडियन खूबसूरत कपड़े में क्यों घूमते हो, तुम तो साइंटिस्ट हो, तुम ऐसे कपड़े पहनो जो तुम्हें साइंस में सूट करे। और होमी भाभा और अम्मा बैंगलोर में बैडमिंटन पार्टनर्स थे तो वो अक्सर बैडमिंटन खेलते थे और होमी ने ही उनको इंट्रोड्यूस किया।
दिलचस्प बात यह है कि शुरू में विक्रम और मृणालिनी एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं थे।
मृणालिनी और विक्रम जब पहले मिले देवर यंगर, और तब मेरे ख्याल से उन एक दूसरे को ज्यादा, यानी विक्रम ने ज्यादा पसंद नहीं किया, वो कहे कि शी वॉज वेरी गेम्स और पार्टीज में ज्यादा, उसका सिर्फ लाइट दिमाग की, यानी यू नो इंटरेस्टेड इन ट्रिवियल थिंग्स, तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। पर लेकिन क्या हुआ कि मृणालिनी ने फिर डांस में बहुत ही सीरियसली इंटरेस्ट लिया, और वेरी इन अ वेरी डेडिकेटेड वे शी हैड फाउंड हर कॉलिंग। तो जब दोबारा मिले तब दोनों सेट हो गए थे उनकी करियर्स, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते थे, लेकिन दोनों कहते थे कि हम शादी नहीं करेंगे, हमें शादी में दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो डांस सीख करना है, मुझे तो साइंस सीख करना है, ऐसे बोलते बोलते शादी हो गई।
जिस दिन उनकी शादी हुई उसी दिन वो ट्रेन से बेंगलोर से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए, वो भारत छोड़ो आंदोलन के दिन थे। आंदोलनकारियों ने हर जगह रेल की पटरियां उखाड़ दी थी, जिसकी वजह से जो यात्रा 18 घंटे में पूरी होनी थी उसे पूरा होने में पूरे 48 घंटे लगे, और विक्रम साराभाई और मृणालिनी साराभाई ने अपना हनीमून ट्रेन के फर्स्ट क्लास कूपे में मनाया। विक्रम का अपनी होने वाली पत्नी को उपहार देने का अंदाज सबसे अलग हुआ करता था।
मृणालिनी ने मुझे इंटरव्यू में कहा बहुत हंस के कि एक भी सीधा गिफ्ट नहीं दिया, यानी मैंने पूछा क्या क्या गिफ्ट दिए, तो उन्होंने कहा एक बार कोई एक बहुत ही खूबसूरत टिबेटन सिल्वर रिंग या ऐसा कुछ, यानी नॉट अ डायमंड रिंग और यू नो इतने अमीर, बट ही सेड इट वाज अ ब्यूटीफुल रिंग बट इट वाज अ टिबेटन सिल्वर रिंग, और दूसरी बार एक स्लेंडर लॉरिस, यानी स्लेंडर लॉरिस क्या होता है कि एक मंकी जैसे श्रीलंका में और साउथ इंडिया में बट रेयरली देखने को मिलता है, एक बंदर जैसा थोड़ा दिखता है लेकिन छोटा होता है। तो एक दिन मृणालिनी ने दरवाजा खोला, कोई ने किसी ने बेल मारी होगी और खोला तो ये स्लेंडर लॉरिस उनके फियांसे से आई थी, उनका नहीं चाहिए। लेकिन एक और बहुत खूबसूरत गिफ्ट मेरे ख्याल से जो शादी के दिन सवेरे एक विक्रम साराभाई ने बहुत ही ढूंढा बाजार से, और वो क्या बोलते हैं बहुत ही रेयर ब्लू लोटस और एक बहुत ही सुंदर सिल्वर थाली में भेजा, तो तब बोला कि हाँ बस ठीक है।
विक्रम साराभाई बहुत मेहनत करते थे, वो वैज्ञानिक होने के साथ साथ बहुत अच्छे प्रशासक भी थे। तनाव से मुक्ति के लिए वो हमेशा संगीत का सहारा लिया करते थे। कहा जाता है कि उनके पास रिकॉर्ड्स का बहुत जबरदस्त संग्रह था। कुंदनलाल सहगल उनके पसंदीदा गायक थे, उन्हें सीटी बजाने का बहुत शौक था। उनके साथ काम करने वाले बताते हैं कि वो प्रयोगशाला में आ गए हैं। इसका पता तब चलता था जब वो सीटी बजाते हुए सीढ़ियां चढ़ रहे होते थे और उनकी चप्पलों की आवाज गूंज रही होती थी।
क्लासिकल वेस्टर्न और क्लासिकल इंडियन का बहुत शौक था और वो अक्सर काम करते समय ट्यून्स विसल करते थे। उनको टैगोर के गाने बहुत पसंद थे, सहगल के गाने बहुत पसंद थे।
विक्रम साराभाई अपने वजन के प्रति हमेशा जागरूक रहते थे। सुबह तड़के उठते थे, 12 बार सूर्य नमस्कार करते थे और मौका मिलने पर तैरते थे। घर पर खाने की मेज पर वो दही, अचार, पापड़ और सलाद के साथ सिर्फ एक रोटी खाया करते थे। अक्सर वो दूसरों की प्लेट से एक निवाला उठाकर कहते थे, ये मेरी प्लेट नहीं है, इसलिए इसकी कैलोरी मुझे नहीं चढ़ेगी।
He was what you call in English a foodie. हमेशा उनके वजन के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे ताकि he liked to be slim and fit. लेकिन खाने में बहुत कुछ भी है, नया है तो करते। तो मेरी माँ जब शादी करके आई तब मेरी माँ तो बिल्कुल मांसाहारी थी और वो उन्होंने शादी की नॉट ओनली एक शाकाहारी परिवार में लेकिन एक शाकाहारी स्टेट में। मेरी माँ पापा का ये फूड का बहुत शौक था इसलिए अलग अलग देश के रेसिपीज को वेजिटेरियन बना के हमारे घर में इंट्रोड्यूस करती थी। बच्चे थे तभी हम मेक्सिकन खाना खाते थे और स्पेनिश खाना खाते थे और अब तो इटालियन वगैरह सब जगह मिलता है, लेकिन इतने साल पहले ये शायद पहला घर था जहाँ दुनिया भर की रेसिपीज एक्सपेरिमेंट की जाती थी।
अपनी शादी के करीब 25 साल बाद उनका एक और महिला कमला चौधरी से संबंध हो गया, लेकिन उन्होंने उसे कभी छुपाया नहीं।
पापा हैड अनदर इन्वॉल्वमेंट 25 इयर्स लेटर विद कमला चौधरी। मुझे बहुत दुख होता था, मैं बहुत आर्ग्यू करती थी, बट एज आई ग्रू अप आई अंडरस्टूड दैट इट इज पॉसिबल टू लव टू पीपल। मेरी उनसे आर्ग्यूमेंट ये होती थी कि यस बट यू हैव टू चूज, यू कांट हैव अ होल फैमिली विच इज अनहैप्पी। इस आर्ग्यूमेंट का पीरियड जब चल रहा था तभी उनका देहांत हो गया।
1966 में जब होमि भाभा की विमान दुर्घटना में अचानक मौत हो गई तो विक्रम साराभाई को उनकी जगह परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि उनकी परमाणु शोध की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी।
भाभा की जो पर्सनालिटी थी, अकॉम्प्लिश्ड साइंटिस्ट थे और उनके जो लिंक्स थे इंटरनेशनल साइंस कम्युनिटी के साथ, तो सक्सेसर जो होगा वो उनको भी थोड़ी ऑन पार होना चाहिए वैसी सोच थी तब की। थोड़े लोगों को अप्रोच किया गया लेकिन नहीं जमा नहीं, और तब साराभाई को अप्रोच किया कि आप ले लो। अभी क्या हुआ कि ऑलरेडी वो स्पेस प्रोग्राम चला रहे थे, तो दो बड़े बड़े प्रोग्राम चलाना इट वाज डिफिकल्ट। यानी आप अगर दूसरे सब इंस्टीट्यूशंस देखे, साराभाई ने जो शुरू किए थे उन्होंने शुरुआत की, तो उन्होंने ऐसे ही फाउंडेशन रखा जो कंटिन्यूएशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन यहाँ पे ही वॉज इनहेरिटिंग, ही वॉज गोइंग इन टू समथिंग डिफरेंट। वॉज ही द नेचुरल सक्सेसर या वॉज देर अ कॉन्ट्रोवर्सी? तो राजा रमन्ना जो काफी सीनियर थे तब उन्होंने बाद में यानी उनकी ऑटोबायोग्राफी में कहा है इट वॉज नॉट अ कॉन्ट्रोवर्शियल अपॉइंटिंग हिम, लाइक ही वॉज कंसिडर्ड की जो स्टैचर थी इट वॉज अ करेक्ट स्टैचर दैट यू नीडेड आफ्टर भाभा।
शुरू से ही वो परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के पक्षधर थे। इंडिया टुडे के संपादक राज चेंगप्पा अपनी किताब वेपन्स ऑफ पीस में लिखते हैं,
परमाणु बम बनाने के मुद्दे पर विक्रम साराभाई और होमि भाभा के विचार बिल्कुल नहीं मिलते थे। भाभा की मृत्यु के 5 महीने बाद जब उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख का काम संभाला तो सबसे पहले भारत के नए नए परमाणु बम कार्यक्रम को समाप्त करने की तैयारी शुरू कर दी। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना याद करते हैं कि साराभाई का मानना था कि हथियार के रूप में परमाणु बम बेकार की चीज है, वो सिर्फ एक कागजी शेर है। परमाणु बम के प्रति साराभाई की सोच से मोरारजी देसाई बहुत खुश हुए। कई साल बाद जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने राजा रमन्ना से कहा, साराभाई समझदार लड़का था, वो पागल भाभा तो पूरी दुनिया को उड़ा देना चाहता था। जब उनके सामने भाभा का ये तर्क रखा गया कि परमाणु बम बनाने में बहुत कम खर्च होगा तो विक्रम साराभाई का जवाब था, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि 2 गज कपड़े की कीमत क्या होगी, लेकिन ये 2 गज कपड़ा बगैर किसी करघे या मिल के तो बनाया नहीं जा सकता।
इंदिरा गांधी विक्रम साराभाई को बहुत मानती थी, वो उन चंद लोगों में से थे जिन्हें वो उनके पहले नाम से पुकारती थी। विक्रम के निजी सचिव के आर रामनाथ बताते हैं कि जब भी इंदिरा गांधी उनके शहर में आती थीं, उनका काम होता था शहर में उपलब्ध सबसे लाल गुलाबों का एक बुके तैयार करना, जिसे विक्रम साराभाई इंदिरा गांधी को दिया करते थे। लेकिन 1971 का अंत आते आते इन संबंधों में खटास आनी शुरू हो गई थी। राज चेंगप्पा वेपन्स ऑफ पीस में लिखते हैं,
भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले नवंबर के आखिरी सप्ताह में इंदिरा गांधी ने साराभाई को मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने उनसे स्पष्ट कहा कि उनके नेतृत्व में एक अंतरिक्ष आयोग बनाने जा रही हैं। इंदिरा गांधी ने साराभाई से परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख का पद छोड़ देने के लिए कहा। साराभाई ने अपने आप को तिरस्कृत महसूस किया। उन्हें लगा कि श्रीमती गांधी का अब उनमें विश्वास नहीं रहा। श्रीमती गांधी ने कहा कि ये बात सही नहीं है। वो बोली, अगर आप इसी गति से काम करते रहे तो हम बहुत जल्दी आपको खो देंगे। साराभाई बहुत निराश होकर दफ्तर से बाहर निकले और उनके कुछ दोस्तों के अनुसार उन्होंने ये भी सोचा कि वो इस्तीफा दे दें। लेकिन भारत पाकिस्तान युद्ध ने इस संकट को टाल दिया और इससे पहले कि अंतरिक्ष और परमाणु आयोग को विभाजित करने की सार्वजनिक घोषणा होती, विक्रम साराभाई का स्वर्गवास हो गया।
30 दिसंबर 1971 को विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम के कोवालम बीच गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। सुबह जब वो सोकर नहीं उठे तो उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। मच्छरदानी के अंदर वो शांतिपूर्वक लेटे हुए थे। उनके सीने पर एक किताब पड़ी हुई थी। जब डॉक्टर ने उनकी जांच की तो पता चला कि 2 घंटे पहले उनका स्वर्गवास हो चुका था। उस समय उनकी उम्र थी मात्र 52 साल।
मैं शूटिंग कर रही थी मेरी फर्स्ट फिल्म को और मैं अम्मा दोनों बॉम्बे थे, हम राह देख रहे थे न्यू ईयर्स ईव के लिए। पापा त्रिवेंद्रम से वापस आकर हमें अहमदाबाद ले आने वाले थे और मेरी और पापा की डेट थी जिमखाना क्लब में डांसिंग जाने की। तो उसी सुबह 29th मॉर्निंग मैं 5 बजे शूटिंग पे जा रही थी, पापा एयरपोर्ट पे जा रहे थे। हमने कहा दूसरे दिन मिलेंगे। मैंने कहा पापा आप मेडिकल टेस्ट करवा के आए हैं, तो इसे डोंट बी सिली, डोंट वरी, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। मैं कल ही गया था और ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं है। और 30th मॉर्निंग मैं शूटिंग पे गई तो अम्मा का फोन आया मेरे डायरेक्टर पे कि मल्लिका को वापस ले आओ घर। तो गाड़ी में वापस आते टैक्सी में अंधेरी से लिटिल गिब्स रोड, मुझे ऐसे ही डर था कि अम्मा को कुछ हुआ है। मैं इमेजिन तक नहीं कर सकती थी कि पापा को कुछ हुआ है। मैं घर पहुंची तो नीचे पूरी गाड़ियां भरी थी, सब लोग सफेद में थे, रो रहे थे। एलिवेटर में मैं ऊपर गई तो पापा के सेक्रेटरी बाहर खड़े थे। मैंने देखा उन्हें, उन्होंने कहा आओ अंदर। मैं गई तो अम्मा बेडरूम में बैठ के रो रही थी। ऑल शी सेड इज मल्लिका पापा इज गॉन। और मेरे तो समझ में ही नहीं आया पापा गॉन का मतलब क्या। सो आई इमीडिएटली सेड एयर क्रैश, क्योंकि उनको कुछ होगा वो तो बिल्कुल इमेजिनेशन में के बाहर था।
मल्लिका साराभाई ने ही अपने पिता की चिता को अग्नि दी। विक्रम साराभाई की माँ भी वहां मौजूद थी। उस समय जम चुके घी को टुकड़ों में तोड़कर जब पुजारी ने चिता में डालना चाहा तो उनकी माँ ने कहा धीरे से डालो, विक्रम को चोट लग जाएगी। 1974 में चांद के क्रेटर का नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। आज चंद्रमा पर भारत ने अपना जो चंद्रयान भेजा है उसकी नींव कई दशक पहले विक्रम साराभाई ने ही रखी थी। रेहान पदल, बीबीसी दिल्ली।
विवेचना पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। और इस बीच हमें अभी अभी बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा की भारत प्रशासित कश्मीर के सौरा से भेजी रिपोर्ट मिली है। आमिर ने बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में ये रिपोर्ट भेजी है। सौरा में आज शुक्रवार की नमाज के बाद प्रदर्शन हुए हैं। सुनिए ये रिपोर्ट।
हम इस वक्त है जनाब साहब सौरा में। यह एक दरगाह है, यही वो हॉटस्पॉट है जहां पे हम पिछले एक हफ्ते से लगातार बड़े वेव में प्रोटेस्ट देख रहे हैं। अगर आपको याद होगा 9 अगस्त को जो फ्राइडे को एक सबसे बड़ा प्रोटेस्ट कश्मीर में हुआ था, जो सौरा में हुआ था, जिसमें ये रिपोर्ट किया गया था कि थाउजेंड्स में सिविलियंस मेल फीमेल ने उसमें हिस्सा लिया था, यही वो जगह है जहां से वो सारे के सारे प्रोटेस्ट आज तक इनिशिएट हुए हैं। आज हमने सौरा में आने की कोशिश की लेकिन यहां की सारी हर गली हर रास्ते में बैरिकेड है, सिक्योरिटी फोर्सेज की प्रेजेंस है। सिक्योरिटी फोर्सेज का ये मानना है अगर हम उन बैरिकेड्स को हटा दें जो प्रोटेस्ट यहां पे गैदर होते हैं, शायद वो मेन रोड पे आके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। आज अगर हम सौरा की बात करें, जुम्मे की नमाज के बाद आज हमने देखा हंड्रेड्स में लोग गैदर हुए यहां पे, मेल फीमेल, जिन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला, जो प्रोटेस्ट इन गलियों और मोहल्लों में आके वापस यहाँ पे डिस्पर्स हुआ। लेकिन हमने सुना उन दूसरी गलियों में से आवाजें आ रही थी पैलेट्स और टियर गैस शेल्स की, और मेरे पीछे भी इस दरगाह के लाउड स्पीकर से पाकिस्तानी तराने चल रहे हैं, जो तराने कश्मीर की आजादी की बात कर रहे हैं। इन्हीं लाउड स्पीकर पर आज सुबह से हमने सुना जहाँ पे अनाउंसमेंट्स हो रही थी, लोगों को घरों से बाहर बुलाया जा रहा था प्रोटेस्ट के लिए, और हमने देखा सैकड़ों की तादाद में आदमी औरतें सब ने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। जहां तक हम देख रहे हैं लोगों के अंदर डर खत्म होता जा रहा है और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आमिर पीरजादा, श्रीनगर।
ये थे बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा। और अब विषय बदलते हैं। आज दिन भर सोशल मीडिया पर कौन सी खबरें ट्रेंड करती रही, इस पर हमारी सोशल मीडिया टीम ने नजर बनाई हुई थी। सोशल ट्रेंड की जानकारी के लिए मैंने अपनी सहयोगी सिंधु वासनी से बात की।
अगर आप ट्रेंडी हैं यानी सोशल मीडिया ट्रेंड्स को फॉलो करना पसंद करते हैं तो आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की हलचल जरूर जानना चाहेंगे। तो आज सोशल मीडिया ट्रेंड्स में सबसे पहले हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। आज उनकी पहली बरसी है। जाहिर है नेताओं से लेकर आम लोग सभी उन्हें याद कर रहे हैं। ट्विटर और गूगल ट्रेंड दोनों में वाजपेयी सबसे आगे हैं। अटल का शांत रहना हो या फिर उनकी हाजिर जवाबी, लोग उनसे जुड़े अलग अलग किस्से याद कर रहे हैं। ऐसा ही एक किस्सा हमने बीबीसी हिंदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पोस्ट किया है। किस्सा यूं है कि एक पत्रकार ने अटल बिहारी वाजपेयी से सीधे ही पूछ लिया, वाजपेयी जी आप अब तक कुंवारे क्यों हैं? वाजपेयी ने जवाब दिया, आदर्श पत्नी की खोज में। पत्रकार ने फिर पूछा, क्या वो मिली नहीं? वाजपेयी ने थोड़ा रुक कर कहा, मिली तो थी लेकिन उससे भी आदर्श पति की तलाश थी। अगर हमारे श्रोता वाजपेयी से जुड़े ऐसे ही और यादगार किस्से पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का रुख कर सकते हैं।
जी सिंधु, इनके अलावा और किन मुद्दों पर आज चर्चा होती रही?
जी वात्सल्य, इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान भी सोशल मीडिया पर खासी चर्चा में है आज। और ये चर्चा इस बार चंद्रयान 2 की वजह से नहीं हो रही है बल्कि इसरो के 50 बरस पूरे होने की वजह से। और एक बार फिर सोशल मीडिया पर वो दिलचस्प तस्वीर शेयर की जा रही है जिसमें भारतीय वैज्ञानिक एक सैटेलाइट को बैलगाड़ी पर रख कर ले जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि तब भारत के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो सैटेलाइट को गाड़ी से ले जाते, लेकिन नहीं, बैलगाड़ी का इस्तेमाल मजबूरी में नहीं बल्कि सोच समझ कर किया गया था। दरअसल ये तस्वीर जून 1981 की है। ये एप्पल नाम का एक प्रायोगिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जिसका प्रक्षेपण 19 जून 1981 को किया गया। ये भारतीय स्पेस प्रोग्राम की एक बड़ी उपलब्धि थी। एप्पल सैटेलाइट को बैलगाड़ी पर इसलिए रखा गया क्योंकि मशीनी वाहन में रखकर ले जाने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन का खतरा हो सकता था, यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए बैलगाड़ी को चुना गया।
और एंटरटेनमेंट जगत की क्या बातें सोशल मीडिया पर आज हुई?
वात्सल्य, आपने सेक्रेट गेम्स देखा होगा शायद। सेक्रेट गेम्स ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वेबसाइट नेटफ्लिक्स की सीरीज है। इसका पहला सीजन पिछले साल ही आया था और दूसरा सीजन अब 15 अगस्त को रिलीज हुआ है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सैफ अली खान, पंकज त्रिपाठी और कल्कि जैसे कलाकार इस सीरीज में हैं। सोशल मीडिया पर इस बारे में खूब चर्चा हो रही है और लोग थोड़े निराश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि पहले सीजन के मुकाबले ये सीजन कम अच्छा है।
ये थी सिंधु वासनी। और हम आपको बता दें कि रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बने रहेंगे। कोच चयन के लिए बनी 3 सदस्यीय कमेटी के प्रमुख कपिल देव ने अब से कुछ देर पहले इसका ऐलान किया है। सुनिए हमारी सहयोगी रेखा की रिपोर्ट।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ रेखा। भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनने की रेस अब खत्म हो चुकी है जिसमें 6 नामों को शामिल किया गया था। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने नए हेड कोच का ऐलान कर दिया है। मौजूदा कोच रवि शास्त्री को चुना गया है। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी आज शाम मुंबई में भारतीय टीम के नए कोच के नाम का फैसला कर चुकी है। आइए सुनते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली का क्या कहना है इस पर।
रवि शास्त्री, अगर आप देखें, जब से उन्होंने सेकंड टर्म में, एक बार पहले कोच थे, फिर अनिल कुंबले आ गए थे, फिर कुंबले को हटाया गया, फिर रवि शास्त्री आए, तो इस सेकंड टर्म में उन्होंने कोई खराब काम नहीं किया है। और अगर आप देखें, वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हार गए कम से कम, लेकिन पूरे लीग में अच्छी क्रिकेट खेली भारत ने, और काफी श्रेय आप दे सकते हैं रवि शास्त्री को भी और विराट कोहली को। और अगर आपको याद हो, पहली बार भारत ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज जीता था, तो उससे श्रेय भी काफी हद तक रवि शास्त्री, क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा के रखा था टीम का।
तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं पे भी किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि रवि शास्त्री दोबारा से कोच बने हैं।
इस पद के लिए पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टॉम मूडी, न्यूजीलैंड टीम के पूर्व कोच माइक हेसन, पूर्व वेस्टइंडीज ऑलराउंडर फिल सिमंस, लालचंद राजपूत, पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रॉबिन सिंह और रवि शास्त्री को शॉर्टलिस्ट किया गया था। हार के बाद कहा, मेरे लिए ये बेहद जरूरी है कि चोट के बाद मैं बेहतर महसूस करूं। मैं खुश हूं कि यहां खेलने आया। मेरा प्लान हारने का नहीं था, लेकिन इस नतीजे को स्वीकार करते हुए मुझे बाहर जाना ही होगा। टीम के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम की तैयारी करूंगा। खेल समाचारों में आज इतना ही।
खेल समाचारों के साथ ही वक्त विदा लेने का हो रहा है। हम आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम के संपादक थे राजेश जोशी, स्टूडियो की कमान थी राजेश चौहान के हाथ। ये एक घंटे का विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक भारत प्रशासित कश्मीर समेत तमाम खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। आप आइए और हमारी खबरों के साथ जुड़े रहिए। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।